हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 15 श्लोक नंबर 44 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थामा वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थोमाः श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न परा वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा पीतांबर दरुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि में भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 15 जिसका शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। श्लोक नंबर 44। ब्रह्मा जी भगवान की सुंदरता के विषय में इतना सुंदर वर्णन कर चुके, और जब चतुष कुमार ने भगवान के सुंदर मुख को देखा तो भगवान के इतने सुंदर मुख को देखकर उनका दिल कर रहा था कि बस भगवान के दर्शन किए जाएं। और जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठे के तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथनों में प्रविष्ट हुई तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रतीक अनुरक्त थे, फिर भी उनको भगवान की सुंदरता ने अपनी ओर आकर्षित कर दिया। आगे कहते हैं शिवा अमुष्य वदन सित पद्मकोशम् उद्वीक्ष सुंदरतरा दकुंद दरकुंदहासम् लब्धाशिष पुनरवेक्ष तदीयमंग्री द्वंद्वेन कारुणमणि शयनम् नदी निदध्यो देवा अमुष्य वदन सितपद्मकोशम् उद्वीक्ष सुंदरतरा दरकुंदहासम् लब्धाशिष पुनरवेक्ष्य तदीयमंग्री द्वंद्वेन कारुणमणि शयनम् निदध्यो देव अमुष्य ते मन वे मुनि वामन वै यानी निश्चय ही अमुष्य अर्थात भगवान का भगवान को जब बोलना होता है तो वहां पर अमुष्य कहा जाता है और वद यानी मुख वदन यानी मुख असित अर्थात नीला पद्मकोश अर्थात कमल का भीतरी भाग जो कमल के सेंटर जो होता है ना वो उद्वीक्ष सुंदरतर उद्वीक्ष्य अर्थात ऊपर देखकर सुंदरतर मतलब सुंदर से भी बहुत बहुत अत्यंत सुंदर अधर यानी होंठ कुंद अर्थात चमकीले चमेली का फूल हासम अर्थात हंसी लब्ध लब्धाशिष पुनरवेक्ष तदीय लब्ध यानी प्राप्त किया आशिष यानी जीवन के लक्ष्य को पुनः अर्थात फिर अवेक्ष यानी नीचे देखकर फिर उनका और भी इच्छा हो रही थी भगवान को देखने के लिए तो तदीयम अंग्री द्वंद्वम तदीयम यानी उनका यानी भगवान का अंग्री द्वंद्वम यानी चरण कमल की जो दोनों चरण कमल जो है वो नख यानी नाखून अरुण अर्थात लाल मणि मणि का मतलब होता है पन्ना या जो ज्वेलरी के डायमंड्स वगैरह होते हैं ना वो श्रयणम अर्थात आश्रय निदध्यु अर्थात ध्यान किया अनुवाद उन्हें भगवान का सुंदर मुख नीले कमल के भीतरी भाग जैसा प्रतीत हुआ भगवान का मुख ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीला कमल हम देखते ना पिंक कलर का कमल होता है व्हाइट कलर का होता है लेकिन एक ऐसा मौसम होता है जिसमें नीला कमल एक बहुत ही सुंदर एक ही तालाब है जिसमें वो नीले कलर का कमल उगता है तो भगवान का जो मुख है वो इतना सुंदर लग रहा था जैसे साक्षात कमल नीला कमल जो है उसका भीतरी भाग हो और भगवान की मुस्कान खिले हुए चमेली के फूल फीसी पड़ती थोड़े अब ये क्या करें क्योंकि इनके पास उपमाएं ही नहीं है वैसे तो भगवान इन समस्त भौतिक वस्तुओं से अत्यंत कई अधिक सुंदर है लेकिन बस ये किसके साथ भगवान के सुंदरता का बखान करें तो इन्हीं भौतिक जगत में जो सुंदर सुंदर वस्तुएं ना उनसे ही उपमा देते हैं मुनिगण भगवान का मुख देखकर पूर्णतया संतुष्ट हो गए थे और जब उन्होंने उनको अधिक देखना चाहा तो उन्होंने उनके चरण कमलों के नाखूनों को देखा क्योंकि वो बहुत भगवान बहुत बड़े थे और जो चतुष्कुमार थे वो यूं समझो कि भगवान का विशाल स्वरूप सामने खड़ा है उसको ऊपर से ऐसे करके देख रहे हैं और उनकी जो हाइट थी ना यूं समझो भगवान का जो पैर है वो घुटने से भी नीचे थी भगवान के घुटने से भी नीचे तक तो वो आ रहे थे जांग तक तो जैसे भगवान का जो चरण है वो बहुत निकट से देखा तो बोला अभी ऊपर तक तो कितना देखें तो भगवान के चरणों पर नजर गई और भगवान के चरण कमलों के नाखूनों को देखा जो पन्ने जैसे थे मतलब ऐसा लग रहा था डायमंड्स हैं और इस तरह वे भगवान के शरीर को बार बार निहार रहे थे, मतलब कभी चरणों को देख रहे हैं, कभी पीताम्बर को देख रहे हैं, कभी भगवान के इतने सुंदर वक्षस्थल को देख रहे हैं, कभी भगवान के हाथों को देख रहे हैं और भगवान की मंद मंद मुस्कान को देख रहे हैं, भगवान के सुंदर नेत्रों को देख रहे हैं, बस बार बार देख ही जा रहे थे। वास्तव में ये जो नेत्र है ना, इनकी सफलता यही है जब उसे भगवान के दर्शन हो जाए। हाय आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। संसार में बहुत कुछ देखा, सब असार है, कोई सुंदरता संसार में नहीं है। जो हमें सुंदर लग रहा है वो केवल उसकी पैकिंग है। कभी कभी आपको कभी अच्छा सा गिफ्ट मिलता है ना, देखने में गिफ्ट लगता है कि यार कितना अच्छा डेकोरेट किया गया है, उसको पैकिंग कितना, अंदर खोलो तो कचरा होता है, कुछ भी नहीं होता आपके काम का। उसी तरह संसार की पैकिंग ब्रह्मा जी ने अच्छी की है, बाकी वास्तव में कुछ भी सार नहीं है संसार में, सुंदर नहीं है। इसलिए कहते हैं सुंदर है तो बस वही श्याम सुंदर है, बाकी सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। और आज जब मुनिगण को साक्षात भगवान के दर्शन हुए तो भला वो कैसे चूक जाते। वो बार बार भगवान को देख रहे हैं और इस तरह वे भगवान के शरीर को बारंबार निहारते रहते थे। अतः उन्होंने अंत में भगवान के साकार रूप का ध्यान किया। फिर उनको लगा कि वाकई में यही साकार स्वरूप तो हमारा लक्ष्य है, हम क्या ब्रह्म निराकार में अपने आप को टाइम वेस्ट कर रहे थे। ये जो भगवान का स्वरूप है, इसी से जीव को संतुष्ट मिलता है, इसी से प्रेम का आदान प्रदान होता है, इसी से हम आनंदित हो सकते हैं, इसके साथ संबंध जुड़ना ही हमारा लक्ष्य है। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, श्रयम मतलब उन्हीं का ध्यान किया, साकार स्वरूप का ही ध्यान किया। आगे मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं कि जो भगवान का स्वरूप है ना, इसी स्वरूप का तो योगी जन ध्यान करते हैं। ये जो भगवान का स्वरूप है वो कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविक है। भगवान का स्वरूप है, भगवान ऐसे ही दिखते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। भगवान को देखने के बाद जीव को कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं रहती। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं, पुंसं गति मृगयता मिह योग मार्ग ध्यानास्पदम बहुमतम नयनाभिरामम पौंसनम वपुर्दर्शयानमनन्यसीद औत्पत्ति कै समग्रणन युतमष्ट भोगै पुंसं गति मृगयतामिह योगमार्गै ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामं पौंसनं वपुर्दर्शया नमनन्यसीद औत्पत्तिकै समग्रिणन् युतमष्ट भोगै पुंसं गतिं, पुंसं मन उन पुरुषों की, गतिं यानी मुक्ति, मृगयतां ढूंढ रहे इह इस जगत में योग मार्ग है यानी अष्टांग योग विधि के द्वारा, ध्यान आस्पदम अर्थात ध्यान का विषय, बहुमतम बहुमना महान योगियों द्वारा, मतम यानी संस्तुत, नयन अभिराम नयन मना नेत्र, अभिरामम अर्थात सुहावने, पौंसनम यानी मानव, वपु यानी रूप, दर्शयानम यानी प्रदर्शित करते हैं। पौंसनम वपुर दर्शन, पौंसनम मना मानव, वपु मना रूप, दर्शयानम अर्थात प्रदर्शित करते हुए, अनन्य यानी अन्यों द्वारा नहीं, सिद्ध है सिर्फ सिद्धियों के द्वारा, उत्पत्ति कै अर्थात विश्व उपस्थित, समग्रणन अर्थात प्रशंसित, युतम यानी भगवान जो समन्वित है, अष्टभोग यानी आठ प्रकार की सिद्धियों में। अनुवाद, यही भगवान का वह रूप है जिसका ध्यान योगी विंद के अनुयायी करते हैं और ध्यान में यह योगियों को मनोहर लगता है। यह काल्पनिक नहीं अपितु वास्तविक है, जैसा कि महान योगियों ने सिद्ध किया है। भगवान आठ प्रकार की सिद्धियों से पूर्ण है, किंतु अन्यों के लिए ये पूर्ण रूप में संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर और विस्तार से श्लोक को समझाएंगे। हम सब श्लोक को प्रेम और भाव से समझने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर योग विधि की सफलता का अति सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। यह विशेष उल्लेख है कि चतुर्भुजी नारायण के स्वरूप में भगवान का रूप योग मार्ग के अनुयायियों के लिए ध्यान का लक्ष्य है। अब यहाँ पर योगी जो योग करते हैं ना, तो उसकी परफेक्शन क्या है कि भगवान का दर्शन हो, भगवान के चतुर्थ भुजाओं का जो नारायण स्वरूप है उसका दर्शन हो। लेकिन आधुनिक युग में ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जो चतुर्भुजी नारायण रूप को अपने ध्यान का लक्ष्य नहीं बनाते। उनमें से कुछ तो किसी निर्विशेष या शून्य का ध्यान करने का प्रयास करते हैं, किंतु यह उन महान योगियों द्वारा अनुमोदित नहीं है जो आदर्श विधि का पालन करते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, आज जो ध्यान करते हैं बोलते हैं ध्यान करो, एक शून्य है, ज्योति का ध्यान करो और फिर उस निर्विशेष का ध्यान करो। बोला ये महान योगियों का अनुमोदित किया हुआ पाठ नहीं है। ये जो आदर्श विधि का पालन करते हैं वो भगवान के साकार चतुर्भुजी नारायण का ध्यान करते हैं। असली योग मार्ग विधि तो इंद्रियों को वश में करना, एकांत तथा पवित्र स्थान में बैठना और नारायण के उस चतुर्भुजी रूप का ध्यान करना है जो इस ध्यान में वर्णित, इस अध्याय में वर्णित विधि से अलंकृत रहता है और जिस रूप में वे चारों मुनियों के समक्ष प्रकट हुए थे। यह नारायण रूप कृष्ण का अंश है, अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो अब विस्तार पा रहा है योगाभ्यास की असली सर्वोच्च विधि है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामं, कि जो भगवान का स्वरूप है वो योगियों के ध्यान का वास्तविक लक्ष्य है, लेकिन कृष्ण जो है यह नारायण रूप कृष्ण का ही अंश है। तो वास्तव में अब जो कृष्ण भावनामृत विस्तार पा रहा है वही वास्तव में योगाभ्यास का असली सर्वोच्च विधि है। कृष्ण भावनामृत तो प्रशिक्षित भक्तिमय योगियों द्वारा सर्वोच्च योग का निष्पादन है। योगाभ्यास के सारे आकर्षणों के बावजूद श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि असली योग मार्ग विधि तो इंद्रियों को वश में करना, एकांत तथा पवित्र स्थान में बैठना और नारायण के उस चतुर्भुजी रूप का ध्यान करना है जो इस अध्याय में वर्णित विधि के विधि से अलंकृत रहता है और जिस रूप में वे चारों मुनियों के समक्ष प्रकट हुए थे। यह नारायण रूप कृष्ण का अंश है, अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो अब विस्तार पा रहा है योग अभ्यास की असली सर्वोच्च विधि है। मतलब जो भी योग अभ्यास का लक्ष्य है ना, वो यही है कि हमारा कृष्ण के साथ जो संबंध टूट सा गया है वो पुनः निर्माण हो जाए और ये केवल कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वारा ही संभव है। कृष्ण भावनामृत तो प्रशिक्षित भक्तिमय योगियों द्वारा सर्वोच्च योग का निष्पादन है। योगाभ्यास के सारे आकर्षणों के बावजूद आठ प्रकार की योग सिद्धियां सामान्य व्यक्ति को नहीं प्राप्त होती, किंतु यहाँ यह वर्णन किया गया है कि चारों मुनियों के समक्ष प्रकट होने वाले भगवान स्वयं सभी 8 सिद्धियों से पूर्ण हैं। सर्वोच्च योग मार्ग विधि 24 घंटे कृष्ण पर मन को केंद्रित करना है, यह कृष्ण भावनामृत कहलाती है। श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित योग सिद्धि, योग पद्धति या पतंजलि द्वारा संस्तुत योग पद्धति आजकल अभ्यास किए जाने वाले हठ योग से भिन्न है, जैसा कि आजकल पाश्चात्य देशों में समझा जाता है। असली योगाभ्यास तो इंद्रियों को वश में करना है, और ऐसा वशीकरण हो जाने के पश्चात मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नारायण रूप में एकाग्रित करना है। भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं, और अन्य सारे विष्णु रूप जिनमें उन्हें शंख चक्र गदा पद्म से सजे हुए उनका वर्णन किया गया है, कृष्ण के स्वांश हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी साफ साफ बता रहे हैं कि योगा अभ्यास का वास्तविक लक्ष्य तो भगवान नारायण पर ही केंद्रित करना है अपने मन को, लेकिन वास्तविक योगा अभ्यास की सिद्धि क्या है? सर्वोच्च योग मार्ग विधि 24 घंटे कृष्ण पर मन को आकर्षित करना है, क्योंकि कृष्ण को मन पर केंद्रित होना क्या है, जितने भी विष्णु हैं, जो वो उन सबका जो आदि है वो भगवान श्री कृष्ण है, जो विष्णु रूप है जिन्हें शंख चक्र गदा तथा पद्म से सजे हुए उनका वर्णन किया गया है, वो सब कौन है? वो कृष्ण के ही अंश है। तो आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत खास बात बता रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की संस्तुति की गई है। मन की एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को सिर तथा पीठ को सीधी रेखा में रखते हुए बैठना होता है, और पवित्र वातावरण द्वारा शुद्ध किए हुए एकांत स्थान में अभ्यास करना होता है। योगी को ब्रह्मचर्य की के विधि विधानों का पालन करना होता है, अर्थात आत्म संयम तथा कौमार्य पूर्ण जीवन बिताने का दृढ़ प्रयास करना होता है। किसी घनी आबादी वाले शहर में अपव्ययी जीवन बिताते हुए और अनियंत्रित यौन तथा जीव के व्यभिचार में लगे रहकर कोई योगाभ्यास नहीं कर सकता। आजकल क्या होता है, जीवन में कोई संयम नहीं, कोई रूल्स विधि विधान नहीं है, और ना ही कोई शुद्धता या पवित्रता है, और सब लोग बने हैं योगी बनने के लिए तैयार, है ना। योग करना है, योगाभ्यास करना है। भगवान कहते हैं पवित्र स्थान होना चाहिए, और वो जगह एकांत में होनी चाहिए, और वहां पर जाकर भगवान के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य अवस्था का पालन करना चाहिए। जिस ऐसी अवस्था जिसमें कोई यौन जीवन का, सेक्सुअल जीवन का कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अनियंत्रित यौन यानी जीव के व्यभिचार में लगे रहकर, एक तो जो यहाँ पर योगाभ्यास कर रहे हैं तथाकथित, उनके खान पान का कोई भी ठिकाना नहीं है, कुछ भी खा लेते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी को कहते हैं कि इस तरह से कोई भी योगाभ्यास नहीं कर सकता। योगाभ्यास के लिए इंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक है, और इंद्रिय नियंत्रण का शुभारंभ जीव को नियंत्रण करने से होता है। जो व्यक्ति जीव पर नियंत्रण रख सकता है वह अन्य इंद्रियों पर भी नियंत्रण कर सकता है। मनुष्य अपनी जीव को सभी प्रकार से अर्जित भोज्य तथा पेय पदार्थों को ग्रहण करने की अनुमति देकर उसी के साथ योगाभ्यास में प्रगति नहीं कर सकता। जब तक जीव कंट्रोल में नहीं है ना, तब तक दूसरी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं आ सकती। ये जीव कर्म इंद्रिय भी है और ज्ञान इंद्रिय भी है। कर्म इंद्रिय के स्तर पर वो भोजन खाती है, टेस्ट लेती है, और जब तक इसके टेस्ट के लिए जीव जीता है, सिर्फ जिह्वार लालसा यदि इति उतिदाहे कृष्णु धर परायण कृष्ण नहीं पाए। यदि जीभ को ही टेस्ट देने के लिए जी हम खाते रहेंगे तो भगवान, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो ऐसे जीव जो है वो योगाभ्यास में तरक्की नहीं, प्रगति नहीं कर सकते। एक तो जीभ जो है वो खाती है और दूसरा जीभ बोलती है। यदि उसको कुछ भी बोलने के लिए परमिशन दी जाए, वो कुछ भी बोल देगी, किसी की निंदा करना, किसी का अपमान करना, किसी को हर्ट करना, तो वो भी योगाभ्यास नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, जिसकी जीभ कंट्रोल में आ जाती है ना, तो बाकी इंद्रियां भी कंट्रोल में आ जाती है। इसलिए यदि हमें देखना है कि क्या हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं, तो इसका अंदाजा किससे होगा? हमारे जीभ से होगा। क्या हमारी जीभ कुछ भी खाने के लिए उत्सुक रहती है, या केवल कृष्ण प्रसाद खाती है? कुछ लोग बोलेंगे, मैं भगवान के लिए तो लहसुन और प्याज के बगैर बना लूंगी, अनियन गार्लिक के लिए बनाऊंगी, लेकिन मुझे तो अनियन गार्लिक के बगैर पसंद नहीं लगता ना, तो मैं अपने लिए अनियन गार्लिक वाला प्रसाद बना लूंगी। जो जीभ के लिए वो प्रसाद खाने, वो भोज्य प्रसाद खाने के लिए तैयार होते हैं, जो भगवान भी स्वीकार नहीं करते, वो भला क्या भगवत भक्ति में तरक्की कर सकते हैं? इसलिए अपने जीवन को संयमित रखना है, अपनी इंद्रियों को संयमित रखना है। वो वस्तुओं को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए जो कभी भगवान को भोग नहीं लगती है, और वो बात कभी नहीं बोलनी चाहिए जो भगवान को अच्छी नहीं लगती है। हमेशा भगवान कहते हैं, वाणी की तपस्या क्या है, भगवत गीता के 17वें या 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, अच्छे सुंदर दूसरों को ना भड़काने वाले और दूसरों को ना दुखी करने वाले शब्द बोलना वाणी की तपस्या है। जब तक हम अपनी जीभ की तपस्या नहीं करेंगे, तब तक हम भक्ति में उन्नति नहीं कर सकते। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यह अत्यंत शोचनीय बात है कि अनेक अवैध तथाकथित योगी पाश्चात्य देशों में आते हैं और लोगों की योगाभ्यास के प्रति उन्मुखता का अवांछनीय लाभ उठाते हैं। ऐसे अवैध योगी सार्वजनिक रूप से यह घोषित करने का दुस्साहस करते हैं कि मनुष्य सूरापान की आदत में लिप्त रहते हुए भी ध्यान का अभ्यास कर सकता है। उनको क्या करना है, बस दूसरों को बताना है ये आसन है, ऐसे करो, भले तुम कुछ भी खाते हो, भले तुम किसी के साथ भी व्यभिचार करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम योगी बन जाओगे आराम से, मैं जो सिखा रहा हूँ बस वो सीखते जाओ। श्रील प्रभुपाद जी कहते, 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए योगाभ्यास की संस्तुति की थी, किंतु अर्जुन ने स्पष्ट रूप से योग पद्धति को कठोर यम नियमों का पालन करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। मनुष्य को कर्म के हर क्षेत्र में अत्यंत व्यावहारिक होना चाहिए और उसे योग के नाम पर व्यर्थ के योगासनों का अभ्यास करने में अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए। अभी यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अपने कार्य के साथ जीव को हमेशा प्रैक्टिकल होना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन योग पद्धति के विषय में जब अर्जुन को बताया, वो अर्जुन जो सशरीर स्वर्ग में चला गया और स्वर्ग की इन जो अप्सराएं हैं उनको ठुकरा के आ गया, वो अर्जुन कहने लगा कि कृष्ण, ये जो योग पद्धति आप मुझे बता रहे हो बहुत कठिन है, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, संचलम ही मना है कृष्ण, ये बहुत ज्यादा कठिन है। जब अर्जुन के लिए ये पद्धति कठिन है, तो फिर हम जैसे विषयी लोग हैं वो भला इसके नियमों का कैसे पालन कर सकते हैं? इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य को कर्म के हर क्षेत्र में अत्यंत व्यावहारिक होना चाहिए, प्रैक्टिकली देखो आपके लिए क्या संभव है, और उसे योग के नाम पर व्यर्थ के योगासनों का अभ्यास करने में अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बोलते, योग का मकसद अगर तुमको उस दूसरे रास्ते से एकदम आसानी से मिल रहा है कृष्ण भावनामृत में, भगवान से प्रेम करके या भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ के, भगवान की भक्ति करके, नाम स्मरण करके, कथाओं को श्रवण करके यदि आप भगवान के अंदर अपने मन को एकाग्र कर सकते हो, तो ये इतना मुश्किल जो अभ्यास है योगाभ्यास का, उसमें अपना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। असली योग तो अपने हृदय के भीतर चतुर्भुधि परमात्मा की खोजना तथा ध्यान में उनका निरंतर दर्शन करना है। ऐसा निरंतर ध्यान समाधि कहलाता है और इस ध्यान का लक्ष्य तो अलंकृत शरीर वाला चतुर्भुजी नारायण होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के इस ध्यान में, इस अध्याय में वर्णन किया गया है। किंतु यदि कोई शून्य या निर्विशेष वस्तु का ध्यान करना चाहता है तो योग अभ्यास में सफलता प्राप्त करने में काफी समय लगता है। हम अपने मन को किसी शून्य या निर्विशेषवादी वस्तु पर एकाग्र नहीं कर सकते। असली योग तो भगवान के चतुर्भुजी नारायण रूप पर मन को स्थिर करना है, जो हर व्यक्ति के हृदय में आसीन है। इतना सुंदर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो आज आपको बताया जा रहा है, एक लाइट है, लाइट का ध्यान कीजिए, ज्योति का ध्यान कीजिए, शून्य निर्विशेष का ध्यान कीजिए, ये ध्यान का वास्तविक लक्ष्य नहीं है। वास्तविक लक्ष्य तो भागवत बताता है। क्या बताता है? कि हृदय के अंदर बैठे हुए चतुर्भुजी नारायण के स्वरूप पर ध्यान कीजिए। तो इसी नारायण के स्वरूप पर ध्यान करना ही योगाभ्यास की वास्तविक सिद्धि है। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ध्यान के द्वारा मनुष्य यह समझ सकता है कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आसीन है। यदि कोई इससे ना भी जानता हो तो भी ईश्वर हर एक के हृदय में स्थित रहते हैं। वे ना केवल मनुष्य के हृदय में स्थित रहते हैं, अपितु वे कुत्ते बिल्लियों के हृदय में भी भीतर भी स्थित रहते हैं। भगवत गीता इस तथ्य को भगवान की इस घोषणा द्वारा प्रमाणित करती है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। जगत के परम नियंता ईश्वर हर एक के हृदय में आसीन है। वे ना केवल हर एक के हृदय में रहते हैं, अपितु वे परमाणु तक के भीतर उपस्थित रहते हैं। ईश्वर की उपस्थिति से कोई भी स्थान शून्य या रहित नहीं है, यह ईशोपनिषद का कथन है। ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है और उनके स्वामित्व का अधिकार हर वस्तु पर लागू होता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान तो हर किसी के हृदय में, खाली मनुष्यों के हृदय में नहीं, जानवरों के हृदय में भी भगवान है। भगवान ने स्वयं कहा, ईश्वर सर्वभूतानां, हर एक के हृदय में भगवान रहते हैं। और ना केवल मनुष्यों और जानवरों के, बल्कि हर एक के हृदय में, अपितु परमाणु, छोटे 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 से छोटा जो कण होता है, जो एक कोई भी वस्तु होती है उसका जो छोटे से छोटी इकाई होती है, उसके अंदर भी भगवान उपस्थित है। तो कोई भी स्थान शून्य नहीं है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर भगवान नहीं है। भगवान जिस स्वरूप में सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, वह परमात्मा कहलाता है। आत्मा का अर्थ है व्यष्टि आत्मा और परमात्मा का अर्थ है व्यष्टि परमात्मा। भगवान का वो स्वरूप जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में रहता है, वो कौन से विष्णु है? वो क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान सब जीवों के हृदय में है। आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही व्यष्टि पुरुष है। व्यष्टि माना इंडिविजनल है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा तथा परमात्मा में यही अंतर है कि आत्मा किसी विशेष शरीर में ही उपस्थित रहता है, जबकि परमात्मा सर्वत्र उपस्थित रहता है। इस संदर्भ में सूर्य का दृष्टांत अति उत्तम है। कोई व्यष्टि व्यक्ति किसी एक स्थान पर रहता है, किंतु सूर्य इसी प्रकार की व्यष्टि सत्ता होते हुए भी हर व्यक्ति के सिर के ऊपर उपस्थित रहता है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। इसलिए यद्यपि सारे जीवों के जिन में भगवान भी सम्मिलित है गुण समान है, तो भी परमात्मा अपने विस्तार करने की मात्रा युक्त शक्ति के कारण व्यष्टि आत्मा से भिन्न है। भगवान या परमात्मा अपना विस्तार लाखों रूपों में कर सकते हैं, किंतु व्यष्टि आत्मा ऐसा नहीं कर सकती। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं आत्मा और परमात्मा का डिफरेंस क्या है। आत्मा और परमात्मा के गुण सेम हैं, लेकिन आत्मा एक ही शरीर में रह सकती है। सारे शरीरों की अलग अलग आत्मा होती है, लेकिन परमात्मा एक ही है और वो सारे जीवों के शरीर में। ऐसा नहीं मेरा परमात्मा अलग है, आपका परमात्मा अलग है। जिस तरह से सूर्य एक होता है ना, और हर एक जीव के सिर पर चमकता है, हर एक जीव को प्रकाश प्रदान करता है। कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरा सूर्य अलग है, आज मेरा सूर्य देर से उगा है, या मेरे सूर्य आज ना देर से अस्त हुआ है, या कुछ नहीं। सूर्य सबका समान होता है, वही होता है, अलग अलग नहीं होता है। बल्कि लेकिन जीव के अंदर आत्मा जो है वो अलग अलग होती है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान या परमात्मा अपना विस्तार लाखों रूपों में कर सकते हैं। अब वो भगवान है, इसलिए हर एक के जीव में आकर वो ही भगवान अपना स्वरूप को इतना एक्सपेंड कर सकते हैं कि वही एक भगवान जो है वो सबके हृदय में बैठ सकते हैं। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं कर सकती। आत्मा अपने आप को इतना एक्सपेंड नहीं कर सकती है। उसको एक समय में एक ही शरीर में रहने की श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हर एक के हृदय में स्थित होने से परमात्मा हर एक के कार्य का अवलोकन कर सकता है, चाहे वह भूत, वर्तमान अथवा भविष्य हो। उपनिषदों में परमात्मा को व्यष्टि आत्मा के साथ मित्र तथा साक्षी के रूप में आसीन बतलाया गया है। मित्र रूप में भगवान अपने मित्र व्यष्टि आत्मा को पा लेने तथा उसे भगवत धाम वापस ले जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। साक्षी के रूप में वे सारे वरों के प्रदाता हैं और वे प्रत्येक व्यष्टि आत्मा को उसके कर्मों का फल देते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो आपके हृदय में जो आत्मा है ना, वो तो आपके कर्मों के अनुसार, उस आत्मा के कर्मों के अनुसार किसी एक जीव के शरीर में डाल दी जाती है। लेकिन जो परमात्मा है वो दो कार्य करते हैं, एक तो आपके मित्र का कार्य करते हैं और दूसरा साक्षी का कार्य करते हैं। मित्र का कार्य क्या होता है कि वो अपने मित्र को इस झुलसते हुए दुखों भरे संसार से निकालकर भगवान के धाम में ले जाने का कार्य करता है। तो मित्र रूप में भगवान अपने मित्र व्यष्टि आत्मा को पा लेने तथा उसे भगवत धाम वापस ले जाने के लिए उत्सुक होते हैं। बस उसकी यही इच्छा होती है कि कब ये मेरी बात सुने। इसे जब भी हम लोग कोई गलत कार्य कर रहे होते हैं तो हृदय से आवाज आती है कि नहीं नहीं तुम मनुष्य हो, तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जब हम भगवान की भक्ति नहीं करते, तो जब हम आरती नहीं करते हैं, नाम जप नहीं करते, तो हृदय से एक आवाज आती है कि तुमने आज अपना जप नहीं किया, आज अपनी माला नहीं की, या अपने आरती नहीं की, या भगवान की सेवा नहीं की, तो मनुष्य हो। तो ये अंदर में बैठा हुआ परमात्मा सदैव इस बात के लिए उत्सुक होता है कि हम अपने भौतिक जगत में आने के बाद जो विधि विधान है उनको पालन करें और भगवान के धाम में वापस जाएं। और साक्षी के रूप में भगवान क्या करते हैं, सारे जीवों के प्रदाता हैं। मतलब जो जो हमने पिछले जन्म में कार्य किए हैं उन सारे कार्यों के जो रिजल्ट हैं वो हमें देते हैं, क्योंकि उनको भूत, भविष्य और वर्तमान सब पता होता है कि हमने कौन कौन से अच्छे या बुरे कार्य किए हैं, तो उनके फल हमें प्रदान करते हैं और वो प्रत्येक व्यष्टि आत्मा को उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। परमात्मा हर व्यष्टि आत्मा को वे सारी वस्तुएं प्रदान करते हैं जिन्हें इस भौतिक जगत में वह भोगना चाहता है। यहाँ तक कि हमारी जो इच्छा होती है ना, वो इच्छाएं भी परमात्मा पूरी करते हैं। भले वो इच्छाएं भगवत प्राप्ति की ना होकर संसार में आनंद भोगने की हो, तो जितनी भी भौतिक इच्छाएं हम करते जाएंगे उतने उतने हमको शरीर प्राप्त होते जाएंगे। जैसे अगर किसी जीव को बहुत ज्यादा इच्छा है कि वो नॉन वेजिटेरियन खाए, तो भगवान उसको ऐसा ही शरीर प्रदान करेंगे जिससे वो अपनी इस इच्छा को पूरा कर सके। किसी जीव के हृदय के अंदर बहुत ज्यादा यौन संबंध स्थापित करने की इच्छा होगी, तो भगवान उसको ऐसा ही कुत्ते बिल्लियों जैसा शरीर दे देंगे जिसमें वो बिना रोक टोक कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये और जितने जितने हमारी इच्छाएं होती जाएंगी उतने 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 हमको भौतिक शरीरों में दुख भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक छोटी सी भी इच्छा यदि हृदय के अंदर रह जाएगी तब तक भी हम भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा बुद्धिमानी ये है कि जीव के हृदय में बस एक ही इच्छा हो कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं। जब ये इच्छा जीव के हृदय में आ जाती है तो जीव भगवत प्राप्ति करने के योग्य हो जाता है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि दुख तो भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की जीव की लालसा का प्रतिफल होता है। दुख क्यों होता है? क्योंकि संसार में हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, किंतु भगवान अपने मित्र व्यष्टि आत्मा को जो कि उसका पुत्र भी है अन्य सारे कार्यों को त्याग कर नित्य आनंदमय तथा ज्ञानमय जीवन के लिए उनकी शरण में जाने का आदेश देते हैं। सभी प्रकार के योग पर अत्यंत प्रमाणिक तथा सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक भगवत गीता की यह अंतिम शिक्षा है। इस तरह भगवत गीता का अंतिम शब्द योग की सिद्धि में अंतिम शब्द है। श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के महत्व को बताते हुए यहाँ पर बताया है सभी प्रकार के योग पर अत्यंत प्रमाणिक तथा सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता है, और उसका अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है, योग की सिद्धि क्या है, भगवान के अंदर मन लगाना। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है वह सर्वोच्च योगी है। भगवान कहते हैं योगिनामपि सर्वेषां मत्कतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समी युक्तस्तमा। कि भगवान कहते हैं योगिनामपि सर्वेषां मत्कतेनान्तरात्मना, जो अपने अंतर आत्मा से मेरे विषय में सोचता है, श्रद्धावान भजते यो मां, जो श्रद्धा के साथ मेरा ही भजन करता है वही योग में सबसे उत्तम है। श्रील प्रभुपाद जी प्रश्न कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत क्या है? जिस तरह व्यष्टि आत्मा अपनी चेतना के द्वारा उसके सारे शरीर में उपस्थित रहता है, उसी तरह अति चेतना द्वारा परमात्मा सारी सृष्टि में उपस्थित रहता है। यह अति चेतना शक्ति व्यष्टि आत्मा द्वारा जिसकी चेतना सीमित है नकल की जाती है। मैं यह तो समझ सकता हूँ कि मेरे सीमित शरीर में क्या हो रहा है, किंतु इसका अनुभव नहीं कर सकता कि दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है। मैं अपनी चेतना के द्वारा अपने सारे शरीर में उपस्थित हूँ, लेकिन मेरी चेतना अन्य के शरीर में उपस्थित नहीं है, किंतु परमात्मा सर्वत्र तथा सबों के भीतर उपस्थित होने से हर एक व्यक्ति के शरीर के विषय में भी सचेत रहते हैं। यह सिद्धांत कि आत्मा तथा परमात्मा एक है स्वीकार्य नहीं है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं देखो एक आत्मा होती है, एक शरीर के अंदर होती है, तो शरीर के किसी भी हिस्से में यदि कोई दुख होता है, कोई कट लगता है या कोई भी, तो पूरे शरीर के बारे में तो उसको पता चल जाता है कि उस आत्मा को पता चल जाता है कि इस हिस्से में दुख हो रहा है या कभी दांत में दर्द होता है, कभी क्या होता है, तो उस शरीर के बारे में तो उसको पता है, लेकिन उसके साइड में जो दूसरा शरीर है उसके अंदर जो भी दुख है सुख है वो उसको नहीं समझ सकता। वो बताएगा यदि चिल्ला करके मुझे ये दर्द है, तो उसको पता तो चलेगा लेकिन फिर भी कितना दर्द है,
कितना उसको दुख हो रहा है या कितना तकलीफ हो रही है वो नहीं समझ पाएगा, वो बताएगा बहुत हो रही है बहुत हो रही है, वो सिर्फ सुन सकता है लेकिन महसूस नहीं कर सकता। इसलिए लेकिन परमात्मा तो उसके हृदय में भी है, उसके हृदय में भी है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते ये सिद्धांत स्वीकार्य नहीं है कि आत्मा तथा परमात्मा एक ही है, क्योंकि इसकी पुष्टि प्रमाणिक वैदिक वांग्मय से नहीं होती है। व्यष्टि आत्मा की चेतना अति चेतना में कार्य नहीं कर सकती, किंतु यह अति चेतना ब्रह्म की चेतना के साथ व्यष्टि चेतना को जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। यह जुड़ने की प्रक्रिया शरणागति या कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षाओं से यह स्पष्ट है कि अर्जुन प्रारंभ में अपने भाइयों तथा संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु भगवत गीता समझ लेने पर उसने अपनी चेतना को कृष्ण की चेतना अति चेतना से संयुक्त कर दिया, तब वह कृष्ण भावना अमृत में था। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वैसे तो भगवान अति चेतना माना वह चेतना जो प्रत्येक जीव के हृदय में है वो अलग है, और व्यष्टि चेतना यानी इंडिविजुअल हमारी आत्मा अलग है, लेकिन यदि हम भगवान की सेवा करेंगे भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो जो भगवान की आज्ञा है या भगवान अति चेतना की जो इच्छा है वही उसी को पालन करने के लिए जब कार्य करेंगे तो फिर जिस तरह से अर्जुन ने वैसे तो अर्जुन की इच्छा अलग थी भगवान की इच्छा अलग थी, लेकिन जब वो शरणागत हो गया तो फिर भगवान की इच्छा ही अर्जुन की इच्छा बन गई। मतलब भगवत गीता समझ लेने पर उसने अपनी चेतना को कृष्ण की अति चेतना से संयुक्त कर दिया, तब वो कृष्ण भावनामृत में था, यानी भगवान जैसी इच्छा करते थे करिष्ये वचनम तव, आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा। तो पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के आदेश से कर्म करता है, यही कृष्ण भावनामृत है कि जैसा आदेश कृष्ण दे हम ऐसे ही कार्य करें। कृष्ण भावनामृत की शुरुआत में गुरु के पारदर्शी माध्यम से आदेश प्राप्त किया जाता है। जब कोई व्यक्ति पर्याप्त प्रशिक्षित हो लेता है और कृष्ण के प्रति विनीत श्रद्धा तथा प्रेम से प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में कार्य करता है तो संयुक्त होने की विधि अधिक दृढ़ तथा सही बन जाती है। अब यहाँ पर शब्द लिखा है प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक मतलब जो कि परंपरा से आया हो और परंपरा के ही अनुसार चल रहा हो, जो अपने नियम नहीं बनाता है, जो जैसा जैसा उन उस परंपरा से के आदेश है उसी को फॉलो करते हुए जो गुरु आपको आज्ञा देता है ना, यदि हम उस गुरु के आदेशानुसार कार्य करते हैं तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शुरुआत में गुरु के पारदर्शी माध्यम से आदेश प्राप्त किया जाता है। जब कोई व्यक्ति पर्याप्त शिक्षित हो जाता है तो और कृष्ण के प्रति विनीत श्रद्धा तथा प्रेम में प्रेम से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में कार्य करता है, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जीव प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में कार्य करे, तभी उसे वास्तविक कृष्ण भावनामृत का ज्ञान हो सकता है। इसीलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि विनीत श्रद्धा तथा प्रेम से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में कार्य करता है तो संयुक्त होने की विधि अधिक दृढ़ हो जाती है और वो दृढ़ तथा सही बन जाता है। कृष्ण भावनामृत में भक्ति की यह अवस्था योग प्रणाली की सबसे पूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में कृष्ण या परमात्मा भीतर से आदेश देते हैं, जबकि बाहर से भक्त की सहायता गुरु द्वारा की जाती है। यहाँ पर दो बातें बताई जा रही है, योग की सबसे पूर्ण अवस्था क्या है कि जब जीव पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाए, और इस अवस्था में क्या होता है कृष्ण भीतर से आदेश देते हैं कि आपको ऐसा करना है, जबकि बाहर से भक्त की सहायता गुरु द्वारा की जाती है, और कृष्ण के आदेश और गुरु के आदेश में कोई फर्क नहीं होता है। जो कृष्ण ने कहा है वही गुरु का आदेश है। जैसे कृष्ण ने कहा मन मना भव मत भक्तो, मन में केवल मेरा चिंतन करो और मेरे भक्त बनो, और गुरु का आदेश भी यही होगा, मन में केवल कृष्ण का चिंतन करो और कृष्ण के भक्त बनो। तो ये आदेशों में कभी भी बदल चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन गुरु जो है भगवान के आदेश का पालन करने के लिए अपने शिष्य की सहायता करता है। इसीलिए यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, इस अवस्था में कृष्ण या परमात्मा भीतर से आदेश देते हैं, जबकि बाहर से भक्त की सहायता गुरु द्वारा की जाती है, जो कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। प्रामाणिक प्रतिनिधि का मतलब होता है एज इट इज, जो बताए, जो उसके अंदर कोई भी चेंजिंग ना करे, जैसा कृष्ण ने कहा है बस उस मैसेज को देकर अपने इस वास्तविक जो उसका फर्ज है कि मुझे कृष्ण की आदेश को देना है, उसी को प्रामाणिक प्रतिनिधि कहते हैं। भीतर से परमात्मा चैत्य के रूप में भक्त की सहायता करते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक के हृदय में के भीतर आसीन रहते हैं। किंतु इतना समझना कि ईश्वर सबके हृदय में आसीन है पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को भीतर तथा बाहर दोनों तरह से ईश्वर से परिचित होना होता है, और कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए उसे भीतर तथा बाहर से आदेश प्राप्त करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था तथा समस्त योगियों की सर्वोच्च सिद्धि है। तो श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि इतना काफी नहीं है कि हम बोलें कि भाई अंदर से मेरा चैत्य गुरु तो मेरी सहायता करता ही है, तो बस मुझे बाहर के गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य को भीतर तथा बाहर दोनों तरह से ईश्वर से परिचित होना चाहिए। बाहर एक प्रमाणिक गुरु आपकी सहायता करेगा, वरना तो हम कोई भी, क्योंकि मन भी तो अंदर से कुछ ना कुछ बताता रहता है, और मन गलत बताएगा, हम बोलेंगे ये भगवान की इच्छा है। आजकल तो पाप करते वक्त भी जीव यही सोचता है, शायद भगवान की यही इच्छा होगी। ये भगवान की इच्छा नहीं होती है। पाप तो भगवान कहते हैं रजोगुण समुद्भवा, हृदय के अंदर जो रजोगुण है वो आपको पाप करवाता है, जो आपके अंदर जो वासना है वो आपसे पाप करवाती है। और जीव जो है वो इतना घृणित सोच रखता है कि वो सोचता है क्योंकि भगवान की इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो मैं पाप भी भगवान की इच्छा से करता हूँ। इसलिए शिला प्रभुपाद जी हमें सावधान कर रहे हैं कि भीतर और बाहर दोनों तरह से ईश्वर से परिचित होना चाहिए, और कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए उसे भीतर तथा बाहर से आदेश प्राप्त करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था है तथा समस्त योग की सर्वोच्च सिद्धि है। पूर्ण योगी के लिए 8 प्रकार की चरम सिद्धियां हैं। अब यहाँ पर योगा अभ्यास की जो पूर्णता है उसके जो 8 चरम सिद्धियां उसके विषय में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। वायु से भी हल्का, परमाणु से भी छोटा, पर्वत से भी भारी, जो भी इच्छा करे उसे पा सकना, ईश्वर की तरह नियंत्रण करना इत्यादि। किंतु जब वह भगवान से आदेश पाने की सिद्धावस्था तक पहुंच जाता है तो वह उपर्युक्त भौतिक उपलब्धियों की किसी भी अवस्था में से बढ़कर होता है। ये सब जो उसकी सिद्धियां हैं, वायु से भी हल्का हो जाना, या परमाणु से भी छोटा हो जाना, या फिर पर्वत से भी भारी हो जाना, इच्छाओं को पा सकना, ये तो भौतिक हैं। एक बारी क्या हुआ, शिला प्रभुपाद जी गंगा को यमुना को पार कर रहे थे, तो एक वहां पर योगी आया, बोला स्वामी जी आप कृष्ण भावना भावित हो और आपको इतनी भी ट्रिक नहीं आती, देखो मैं कैसे इस यमुना को बगैर बोट के पार कर सकता, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ बोट का इंतजार कर रहे थे कि वहां पर कश्ती आएगी तो फिर यहाँ से हम पार करेंगे। तो फिर है ना, उसने बोला कि देखो मैं कैसे पार कर सकता हूँ, तो उसने श्रीला प्रभुपाद जी के सामने सामने उस पानी के ऊपर से चलकर, मतलब जैसे हम रोड पे कैसे चलते ऐसे चढ़कर यमुना को पार कर दिया। अभी वो पार कर ही रहा था कि उसने बोला देखा स्वामी जी, ये मेरे जीवन भर की साधना है जिसके कारण मेरे अंदर इतना पावर आ गया कि मैं पानी के ऊपर उस तरह से चल सकता हूँ जिस तरह से कोई सड़क पे चल सकता है। तो इतने में नाव वाला आ गया और श्री प्रभुपाद जी उस नाव के अंदर बैठे और उस यमुना को पार किया और नाव वाले को 1 रुपया दिया। और फिर श्री प्रभुपाद जी ने उसको बताया, अरे पूरा जीवन बस इस 1 रुपए की सिद्धि को प्राप्त करने में ही खत्म कर दिया। ये तो पार करना तो उसके लिए तो सिर्फ 1 रुपया काफी था, मैंने 1 रुपया दिया और उसने मुझे नाव में बिठा के पार कर दिया और तुमने अपना जीवन सारा इसमें सत्यानाश कर दिया। इससे बेहतर था कि भगवान का नाम जप करते, भगवान की भक्ति करते तो तुम भव सागर को इसी आसानी से पार कर सकते थे। इस भौतिक जगत की सिद्धियां इतनी आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप कितनी भी सिद्धियां प्राप्त करोगे आज नहीं तो कल, मृत्यु तो अटल सत्य है। बड़े बड़े योगी हुए, क्या आज वो आपको जिंदा दिख रहे हैं? सब मर जाते हैं, लेकिन भव सागर को पार करने के लिए भगवत भक्ति की आवश्यकता है। इसलिए योगाभ्यास में अपना समय व्यतीत करने से ज्यादा बेहतर है कि हम भगवान के प्रेम के साथ भगवान की सेवा करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान की भक्ति करें, तो हम भवसागर को पार करने के लिए योग्य हो सके। इसीलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जब वह भगवान के आदेश पाने की सिद्धा अवस्था तक पहुंच जाता है तो वह उपर्युक्त भौतिक उपलब्धियों की किसी भी अवस्था से बढ़कर हो जाता है। योग प्रणाली का प्राणायाम जिसका सामान्य तौर पर अभ्यास किया जाता है मात्र शुरुआत है। जो प्राणायाम होता है ना, सांसों की क्रिया को रोको, कपालभाति, लोम अनुलोम, ये सब तो शुरुआत है। परमात्मा का ध्यान अगला कदम है, किंतु परमात्मा से सीधा संपर्क प्राप्त करना और उनसे आदेश लेना सर्वोच्च सिद्धावस्था है। ध्यान की प्राणायाम विधि 5000 वर्ष पूर्व भी अति कठिन थी, अन्यथा अर्जुन ने इस प्रणाली को अपनाने से के कृष्ण के प्रस्ताव को अस्वीकार न किया होता। यह कलयुग पतित युग कहलाता है। इस युग में लोग सामान्यतः अल्पायु तथा आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक जीवन को समझने में अत्यंत मंद होते हैं। वे प्रायः अभागे होते हैं। अतः यदि कोई आत्म साक्षात्कार में तनिक भी रुचि रखता है तो वह कई षड्यंत्रों द्वारा गुमराह किया जा सकता है। योग की पूर्ण अवस्था प्राप्त करने का एकमात्र साधन भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन करना है, जिसका अभ्यास श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। यह योग अभ्यास की सरलतम तथा सर्वोच्च सिद्धि है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण भावनामृत योग प्रणाली का प्रदर्शन व्यावहारिक रूप में कृष्ण के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करके किया, जैसा कि वेदांत, श्रीमद्भागवत, श्रीमद्भगवद गीता तथा कई महत्वपूर्ण पुराणों में संस्तुत किया गया है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो स्टार्टिंग है कि अपने आसनों का या यम नियमों का पालन करना या सांसों की क्रिया को नियंत्रण करना, ये इतना कठिन है कि उस 5000 साल पहले अर्जुन ने इसको मना कर दिया। अगर ये सरल होता तो अर्जुन बोलते थे ना, हाँ ये तो बहुत आसान है, मैं कर लूंगा। अर्जुन के लिए जो योगाभ्यास मुश्किल है, और आज के साधारण पतित कलयुग के पतित जीव जिनके पास ना बुद्धि है, ना आयु है, ना ज्ञान है, ना समझ है, ना ही सही तरह से कोई शिक्षा देने वाला है, वो भला क्या योगाभ्यास का पालन करेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गुरु मोहे मूर्ख जाने करेरो तारन, जपो तुम कृष्ण नाम। यही वेदांत का सार के जो वेदांत है, जो भी योग साधना के नियम है, जो भी है, उसका सार क्या है कि हमको हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करना चाहिए। और यही केवल वेदांत का नहीं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल कीर्तन करके हम वेदांत श्रीमद भागवतम श्रीमद भगवत गीता और कई महत्वपूर्ण पुराणों में उसी की संस्तुति है, तो उन सब शास्त्रों का यही कहना है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करना चाहिए और इसी में मन लगाना चाहिए। भारतीय सबसे अधिक संख्या में इसी योग विधि का पालन करते हैं और यह धीरे धीरे संयुक्त राज्य के अनेक शहरों में फैल रही है। यह इस युग के लिए अतीव सरल तथा व्यावहारिक है, विशेष रूप से उनके लिए जो योग में सफलता के प्रति गंभीर हैं। इस युग में कोई अन्य विधि सफल नहीं हो सकती। ध्यान की विधि स्वर्ण युग या सतयुग में संभव थी, क्योंकि उस युग के लोग लाखों वर्षों तक जीवित रहते थे। जो व्यक्ति व्यावहारिक योगाभ्यास से में सफलता चाहता है, उसे सलाह दी जाती है कि वे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का कीर्तन करे और तब उसे स्वयं अनुभव होने लगेगा कि वह प्रगति कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भावनामृत का यह अभ्यास राज विद्या कहलाता है। जिन्होंने भक्ति योग की इस सर्वाधिक उदात्त विधि को अपनाया है और जो कृष्ण के दिव्य प्रेम में भक्ति का अभ्यास करते हैं, वे इसकी सुखमयी तथा सरल संपन्नता को प्रमाणित कर सकते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, जिन्होंने भक्ति योग की इस सर्वोच्च उदात्त विधि को अपनाया है, जो हरे कृष्ण महामंत्र में श्रद्धा रखते हैं और उसी विधि को करते हैं, और जो कृष्ण के दिव्य प्रेम में भक्ति का अभ्यास करते हैं, भगवान के साथ प्रेम में भक्ति, भक्ति का मतलब होता है लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं, वे उसकी सुखमयी तथा सरल संपन्नता को प्रमाणित कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि कितना आसान है और कितना आनंदमयी है, कितना सरल है। तो यहाँ पर सनक सनातन सनंदन तथा सनत कुमार चारों मुनि भी भगवान के स्वरूप एवं उनके चरण कमलों की धूल की दिव्य सुगंध से के प्रति आकृष्ट हो गए, जैसा कि श्लोक 43 में बतलाया जा चुका है। योग के लिए इंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक है तथा भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत इंद्रियों को शुद्ध करने की विधि है। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तो वे वस्तुतः नियंत्रित भी हो जाती हैं। कृत्रिम साधनों से इंद्रियों के कार्यों को नहीं रोका जा सकता, किंतु यदि कोई इंद्रियों के से को भगवान की सेवा में लगाकर शुद्ध कर लेता है, तो इंद्रियां ना केवल रद्धि कार्य से नियंत्रण की जा सकती हैं, अपितु उन्हें कृष्ण की दिव्य सेवा में लगाया जा सकता है। अभी योग में इंद्रियों को नियमित करना, श्रील प्रभुपाद जी को कहते हैं, अगर आप इंद्रियों को खाली कंट्रोल करोगे, उनको और कोई सेवा नहीं दोगे, भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे, तो ये कृत्रिम तरीका है। मतलब ये एक गलत तरीका है, क्योंकि जैसे ही इंद्रियों को अपनी विषय की वस्तु दी जाएगी तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगी, लेकिन कृष्ण भावनामृत जो है वो इंद्रियों को शुद्ध कर देती है। शुद्ध करना मतलब इंद्रियों के सामने भले उसके पसंद की या विषय वस्तु प्राप्त हो भी जाए, लेकिन इंद्रियां इतनी शुद्ध हो जाती हैं कि गलत कार्य करने की इच्छा तक नहीं होती। जैसे अगर किसी को कहा जाए भाई योगाभ्यास करना है तो आपको अनाज नहीं खाना है, लेकिन जब उसके सामने अनाज की बनी हुई वस्तु आएगी तो दिल उसका करेगा ना खाने के लिए। लेकिन जो भक्त होते हैं उनको पता है भाई एकादशी के दिन हमें अनाज नहीं खाना, तो दुनिया भर की अनाज वाली चीजें बनाकर उसके सामने रखो, पिज्जा बर्गर या फिर कोई भी अच्छे से अच्छी चीजें उसके सामने ला के रखो, लेकिन उस भक्त को पता है कि नहीं कृष्ण को पसंद नहीं है ना, मैं आज अनाज नहीं खा सकता, भले दुनिया की सबसे सुंदर व्यंजन आकर मेरे सामने रखे जाए। इसी तरह से जब भगवान की भक्ति की जाती है तो हृदय शुद्ध होता है, हृदय के अंदर से इच्छा समाप्त हो जाती है और अपितु उन्हें भगवान की दिव्य सेवा में लगाया जा सकता है। जैसा कि चारों मुनियों सनक सनातन सनंदन तथा सनत कुमार ने कामना की थी, इसलिए कृष्ण भावनामृत चिंतनशील मन द्वारा बनाई गई धारणा नहीं है। ये कोई धारणा नहीं है, काल्पनिक नहीं है। इस विधि का आदेश श्रीमद् भगवद गीता 9.34 में हुआ है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो यहाँ प्रश्न प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये तो भगवद गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि चलो ठीक है, योग अभ्यास करके मुझ तक पहुंचना मुश्किल है ना, मन में केवल मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, इससे क्या होगा, मामे वैशति सत्यम ते, तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लोगे। तो योगाभ्यास का वास्तविक लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, और उसकी सरलतम विधि क्या है, सरलतम विधि ये है कि हम भगवान के पवित्र नाम का जप करें। जितना जितना जप करते जाएंगे उतनी उतनी वासना समाप्त हो जाएगी, हृदय पवित्र हो जाएगा, और हम एक दिन कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, जो योगाभ्यास की सर्वोच्च प्राप्य वस्तु है, सर्वोच्च सिद्धि है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।